प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 28 जून 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के मुख्य विषय का चयन करने में सच पूछे तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और दिक्कत इस मायने में हो रही है कि ढेर सारे विषय दिमाग में घूम रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस मुख्य विषय पर हम लोग बात करें और साथ ही साथ यह भी है कि जो दूसरे विषय हैं वो भी इम्पोर्टेंट है तभी इतने सारे विषय इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन फिर भी अंततः चूंकि एक फैसला करना ही था तो मित्रों मैंने एक फैसला किया है कि मैं आज आपसे बात करूंगा थोड़ा सा नीदरलैंड के बारे में जहां हमारे प्रधानमंत्री जी यात्रा पर अभी गए हुए थे। जब तक आप इसे सुनेंगे तब तक वो वहां से रवाना हो चुके होंगे। तो खासकर मैं नीदरलैंड के उन एक दो पॉइंट पर बात करूंगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं मित्रों, और जो दूसरे टॉपिक हैं उन पर भी मुझे थोड़ी विस्तार से बात करनी पड़ेगी। तो आइए अब मैं दूसरे टॉपिक्स पर बात करता हूं। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी की अमेरिका की यात्रा पूरी हो चुकी है और मैं शुरू से अमेरिका के बारे में चर्चा करता रहा हूं, मतलब सतर्क करता रहा हूं, चर्चा मैंने नहीं की है। आप कह सकते हैं कि मैं मुख्य विषय के रूप में आज अमेरिका को चुन सकता था, मैंने इसे नहीं चुना है मित्रों क्योंकि दूसरे टॉपिक्स इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि उनकी भी मुझे थोड़ी थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। तो यदि मैंने आज अमेरिका को चुन लिया होता, भारत अमेरिका को, तो फिर मैं बहुत थोड़ी सी चर्चा कर पाता और पता लगा उसका पार्ट टू और पार्ट थ्री आ रहा है। मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं भारत अमेरिकी संबंधों के बारे में बात करूंगा, बाकायदे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर बात करूंगा, अमेरिका की ताकत क्या है उन सबको बताते हुए बात करूंगा, इत्मीनान के साथ में बात करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका से रवाना हो चुके हैं, अब आपके सामने अखबार हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज हैं जिसमें भारत और अमेरिका के बीच क्या बातचीत हुई है इसके बारे में ढेर सारी बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी। आप उन्हें अभी पढ़ते रहिए, मैं भी आपको प्रेस क्लिपिंग्स जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, बाद में हम इस पर इत्मीनान के साथ विस्तार से बातें करेंगे। फ्रेंड्स मेरे पास जो दूसरे थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बात करने के लिए, न्यूज में नीदरलैंड की बात थी जिस पर मैं अलग से चर्चा करने जा रहा हूं। दो तीन और इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और जो प्रेस क्लिपिंग्स से रिलेटेड भी हैं। फ्रेंड्स आपने कल के अखबार में पढ़ा होगा कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी, उनको शिक्षा नीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष कस्तूरी रंगन जी हैं और वो हमारी शिक्षा नीति तैयार करेंगे। फ्रेंड्स ये जो शिक्षा नीति है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए का मतलब है देश के लिए है ही, साथ ही साथ सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नो डाउट कि इसे अभी आने में 6 महीने 8 महीने लग सकते हैं, समय निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 6-1 महीने में ये समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी और फिर इस पर बहस होगी चलेगी और देखते हैं कि कब तक लागू होगी, क्योंकि हमारी जो पिछली शिक्षा नीति जो आई थी आप समझ लीजिए कि लगभग वो अब 20-25 साल पुरानी हो गई है। नई शिक्षा नीति की जरूरत है क्योंकि इस बीच में माहौल पूरी की पूरी दुनिया का, समाज का काफी कुछ बदल चुका है। यहां मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना ये चाहूंगा फ्रेंड्स कि इससे पहले 2015 में जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे टीएसआर सुब्रमण्यम, वो उत्तर प्रदेश कैडर के थे और मैं उन्हें सुनता हूं वो सच में ब्यूरोक्रेट्स कम और एकेडमिक ज्यादा लगते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनकी ब्रिलियंसी, उनका समर्पण, उनकी समझ सब कुछ बहुत अद्भुत है। आपको कभी भी इनका कोई भी लेख पढ़ने को मिले तो आप प्लीज जरूर पढ़ें, अगर आपको इंटरव्यू सुनने को मिले तो आप जरूर सुने, आप बहुत एनरिच होंगे, अपने आप को बहुत समृद्ध पाएंगे इनको सुनने के बाद। तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और उस समिति ने अपने कुछ सजेशंस दिए थे। अब बट नेचुरल की जो नई समिति होगी उसके उनके उस समिति के पास सुब्रमण्यम समिति के सजेशंस ऑलरेडी होंगे। मित्रों चूंकि वक्त नहीं है, अदरवाइज मेरा मुख्य विषय ये भी हो सकता था, कभी इस विषय को भी रखा जाएगा जब उपयुक्त अवसर आएगा। मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि शिक्षा पर, शिक्षा नीति की बात मैं नहीं कर रहा, वो जब आएगी तब आएगी, शिक्षा पर मतलब भारत की जो शिक्षा पद्धति है उस पर, चाहे वो फिर प्राथमिक शिक्षा हो या फिर हायर एजुकेशन क्यों ना हो, एक टेक्निकल एजुकेशन का भी पार्ट है। इन सब पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आप सिविल सर्विस के अनसॉल्व पेपर उठाकर देखें तो हर साल एजुकेशन पर एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है, और चूंकि वो बड़े सामान्य नेचर का होता है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं होता, और ये टॉपिक कठिन है भी नहीं। शिक्षा व्यवस्था आप अपने सामने देख ही रहे हैं, उसके भुक्त भोगी ही हैं, आपके पास उसके अच्छे और बुरे सारे अनुभव हैं, तो उन सबको मिलाकर के आप एक नोट, अच्छा सा नोट्स तैयार कर लीजिए, एक अच्छी सी टिप्पणी तैयार कर लीजिए, पॉइंट पॉइंट में ही तैयार कर लीजिए कि हमारी जो शिक्षा है वो उसके क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। ये इस टॉपिक पर आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद मित्रों, जो इस दूसरी जो खबर अखबारों में कल थी, और कल मैंने आपको एक एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड किया था, आज इकोनॉमिक्स टाइम्स का मैं एडिटोरियल कमेंट आज भी प्रोवाइड कर रहा हूं, वह है हमारे अभी बैडमिंटन के उभरे हुए ही कह लीजिए स्टार किदाम्बी श्रीकांत। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अभी अभी जब ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता है, और उसमें उन्होंने जो ओलंपिक के विश्व चैंपियन थे, नाम आपको उनका भी मालूम होना चाहिए, वो है चेन लोंग, ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, विश्व ओलंपिक चैंपियन है, उनको हराया है। और इसको लेकर के इकोनॉमिक टाइम्स ने जो टिप्पणी की है कि अब ऐसा लग रहा है कि ये जो बैडमिंटन का खेल है ये भारत का नया क्रिकेट बनने जा रहा है, यानी कि बहुत लोकप्रिय होने जा रहा है। देखिए, प्रकाश पादुकोणे वगैरह के तो नाम उस समय हम सब सुनते थे जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस समय वो हमारे स्टार हुआ करते थे, हीरो हुआ करते थे, क्योंकि बैडमिंटन मैं भी अपना मन बहलाने के लिए खेलता था। और इसके बाद अभी जो नए नाम उभर करके आए हैं, ओलंपिक विमेन का जो सिल्वर मेडल है वो भारत के पास ही, आपको मालूम है पीवी संधू ने लिया, सानिया नेहवाल इसमें काफी आगे हैं, तो बैडमिंटन धीरे धीरे काफी पॉपुलर होता जा रहा है। और खेल पर भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, उसी बात को ध्यान में रख करके मैंने कल भी आपको एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया था और आज भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो प्लीज आप उसे भी ध्यान से देख लें। और जो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं, उनके लिए कि जो किदाम्बी श्रीकांत हैं उनके बारे में ये मालूम होना चाहिए कि बेसिकली वो हैदराबाद के गुंटूर के हैं, किसान के बेटे हैं, एक सामान्य सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं एक तीसरी और बहुत अच्छी प्रेस क्लिपिंग्स ने एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, जिसमें टूरिस्ट पुलिस की बात की गई है। टूरिस्ट पुलिस ये इस मायने में इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि भारत में टूरिज्म की अद्भुत संभावनाएं हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी संभावनाएं हैं। दुनिया के बहुत से देश मैंने देखे हैं दोस्तों, लगभग मैं समझता हूं कि 35-40 देश तो हो गए हैं, छोटे छोटे देश हैं और वहां टूरिस्ट भरे रहते हैं। मतलब कल्पना करके देखिए कि सिंगापुर जैसा छोटा सा देश, जो एक शहर की तरह है, देश तो है ये शहर की तरह है, वो अभी डेटा है कि 2016 में उसके यहां लगभग 1,65,00,000 टूरिस्ट आए विदेश, 1,65,00,000, इतनी उसकी आबादी नहीं है। और भारत में 2016 में हमारे यहां 1,00,00,000 भी नहीं आए हैं, उसमें भी लगभग 10,00,000 कम रह गए, 90,00,000 टूरिस्ट आए, जबकि इतना बड़ा देश है, इतना ऐतिहासिक देश है, इतनी विविधता है, तो अनंत संभावनाएं हैं। लेकिन प्रॉब्लम टूरिज्म को लेकर के क्या है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चलिए वो एक दूसरा पक्ष है, लेकिन जो इस एडिटोरियल कमेंट का जो संबंध है उस बात से है कि जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सुरक्षा नहीं है, वो अपने आप को बहुत डरा हुआ महसूस करते हैं, और घटनाएं आप सुनते ही हैं कि वहां उसको चोरी हो गई, वहां उसकी हत्या हो गई, सबसे ज्यादा रेप के केस सुनने को मिलते हैं जो बड़े घृणित से लगते हैं। तो ऐसे में विदेशों में बड़ा बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है और वो बहुत डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। तो इसको देखते हुए बहुत से हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि आप टूरिस्ट पुलिस बनाइए, मतलब जो टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए अलग से पुलिस हो। 12-13 राज्य ने ऐसा किया भी और वो कहते भी रहते हैं कि हमने बना दिया है, लेकिन उनका कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे अफसोसजनक बात यह है कि देखिए कि क्राइम सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट पर हो रहे हैं वो दिल्ली जैसे शहर में हो रहे हैं, और दिल्ली हमारा हब है, क्योंकि वहीं से आने के बाद फिर लोग इधर उधर दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे जैसी जो भी स्थिति बने, लेकिन ये होना चाहिए कि हम अपने यहां आने वाले पर्यटकों को एक विशेष सुविधा उपलब्ध करा सकें। तो दोस्तों, ये कुछ अखबारों की क्लिपिंग्स के बेस पर मैंने आप से कुछ चर्चाएं की हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे उपयुक्त मालूम पड़ी, जरूरी मालूम पड़ी, और इसके साथ ही मैं कुछ और भी क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, वो आप देख लेंगे। दोस्तों अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, लेकिन मुख्य विषय पर आने से पहले मेरे दिमाग में है कि आपको मैंने प्रीलिम्स की तैयारी कराने का वायदा किया है, बीच बीच में मुझे कुछ इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। मित्रों मेरा एक छोटा सा सजेशन है और वो ये है कि अभी YouTube पर 13 मिनट 32 सेकेंड का एक प्रोग्राम अवेलेबल है, वो है प्रीति हुड्डा का। प्रीति हुड्डा से एक इंटरव्यू लिया गया है, एक जर्नलिस्ट है वो इंटरव्यू ले रहे हैं। प्रीति हुड्डा हिंदी मीडियम से अभी वो सेलेक्ट हुई है, मेरे समझ से शायद रैंक मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन अच्छी रैंक उनकी है। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हैं, बड़ी बात है कि वो हिंदी मीडियम से हैं। दिल्ली के पास बहादुरगढ़ सटा हुआ ही शहर है, वहां की वो कस्बा शहर जो भी कह लीजिए वहां की वो रहने वाली हैं, और उनके पिता जो डेली ट्रांसपोर्ट सर्विस है जिसको DTC कहते हैं, DTC में ड्राइवर है। प्लीज आप वह इंटरव्यू सुने, 13 मिनट 32 सेकेंड आपके लगेंगे, लेकिन केवल सुने नहीं बल्कि पॉइंट नोट करें। मतलब पहला ऐसा इंटरव्यू है ये 13 मिनट का जिससे मैं वाकई में बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूं। कितनी क्लैरिटी है उनके दिमाग में, बोलने में कितना कॉन्फिडेंस है, जो बोलना चाह रही है वही वो बोल रही है, और बाद में तो इंटरव्यूअर कह भी देता है कि आप इतना अच्छा बोल कैसे लेती हैं, आप लोगों में कैसे आ जाती हैं, कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की। एक ऐसे परिवार से हैं जहां कल्पना भी नहीं कर सकते कि सिविल, वो जानते भी नहीं कि सिविल सर्विस क्या होती है। वो JNU में उन्होंने एडमिशन लिया, इत्तफाकन JNU में एडमिशन हो जाने के बाद फिर वहां जो वातावरण मिला, उन्होंने कैसे तैयारी की, और हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम को लेकर के क्या बातें हुई। थर्ड अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ है तो दो अटेम्प्ट में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, वो कैसे उन्होंने अपनी कमजोरियों को पकड़ा, इन सब के बारे में वो बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू है, छोटा सा पीस है, प्लीज आप सब सुने। मुझे लगता है कि आपके मन में बहुत सारे जो सवाल अपने प्रिपरेशन को लेकर के, अपने बैकग्राउंड को लेकर के, अपने मीडियम को लेकर के जो उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, शायद उनमें से बहुतों के जवाब इस इंटरव्यू से आप लोगों को मिल जाएं। तो मित्रों इस सजेशन के बाद अब मैं आता हूं नीदरलैंड पर। फ्रेंड्स जो नीदरलैंड है वो एक संयोग ही है कि कुछ दिनों पहले ही हम लोग नीदरलैंड गए हुए हैं और उसको मैंने जीवंत रूप में देखा है। बहुत ही छोटा सा देश है कह लीजिए, जिसकी आबादी ही आप सोच करके देखिए कि 1.5-2 लाख के बीच में हो, 1.5-2 करोड़ के बीच में सॉरी हो, तो वो कितना बड़ा देश होगा। तो सबसे पहले तो आप अखबार मैप में देखें कि ये नीदरलैंड है कहां। बहुत ही छोटा सा देश, बहुत ही खूबसूरत देश, बहुत ही प्यारा देश, लॉ एंड ऑर्डर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, और मित्रों यूनाइटेड जो आपके यूरोपियन यूनियन है उसका तो यह सदस्य है ही, और यहां की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो 480 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, 480 व्यक्ति प्रति किलोमीटर भारत की तुलना में ज्यादा है। भारत की आप देखिए कि 362-64 हमारे यहां प्रति किलोमीटर व्यक्ति रह रहे हैं, उनका 480 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। जल प्रबंधन के मामले में ये बहुत अद्भुत राष्ट्र है, क्योंकि इसका 80% जो भाग है, डच का जो 80% भाग है, उसका मतलब कह दे नहीं सॉरी 80% नहीं, आधे से अधिक जो एरिया है वो समुद्र तल से नीचे रहता है, समुद्र के किनारे ही है ये, समुद्र तल से वो नीचे रह रहा है, तो बट नेचुरल, लेकिन उनको पानी का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है। शहर के बीच इन एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है दोस्तों, एम्स्टर्डम में ही हम लोग गए थे और उसके बीच में नहर निकली हुई है, और जब नहर की आप नहर पे जब आप सैर करते हैं तो उसी समय एक जगह आती है और वो अनाउंस करता है कि आप अपने लेफ्ट साइड में देखिए ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे आप हिस्ट्री में अपने भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। दोस्तों भारत में जो कॉलोनियल पावर के रूप में जो यूरोप से देश आए थे मसाले का व्यापार करने के लिए, वो शासन करने नहीं आए थे, मसाले का व्यापार करने के लिए आए थे, और मसाला के मामले में भारत दुनिया में श्रेष्ठतम राष्ट्र था। उसमें एक नीदरलैंड भी है, आप जानते हैं पुर्तगाल भी है, आप जानते हैं अंग्रेज मतलब इंग्लैंड तो था ही, फ्रांस भी था, इतिहास में इनके प्रमाण हैं और आप उनको पढ़ते भी हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की दोस्तों, ये 1602 में हुई थी और यह भी भारत आया था, लेकिन भारत में ये बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची तो पुर्तगाल और ब्रिटेन ने इसका मुकाबला करने के लिए हाथ मिलाया और फिर भारत में आकर के बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन होने लगा। तो नीदरलैंड बहुत समय तक ठहर नहीं सका, उस समय इसका नाम हॉलैंड हुआ करता था, तो आपको हिस्ट्री की किताब में हॉलैंड पढ़ने को मिलेगा। तो ये इसकी एक बहुत ही छोटी सी बैकग्राउंड है, बहुत ही छोटी सी बैकग्राउंड मैंने आपको दी है, जो मैंने कहा लेसन फ्रॉम नीदरलैंड कि नीदरलैंड से हम क्या सीख सकते हैं। तो मैं दो बातें खासकर आप लोगों के सामने फ्रेंड्स रखना चाहूंगा और इसे आप कोट कर सकते हैं, आप ऐसे में भी कोट कर सकते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से भी कोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स इसमें यह है कि जो यहां की पूरी पॉपुलेशन है, आश्चर्य करेंगे कि 80% आबादी के पास अपनी बाइसिकल है, साइकिल है, 80% ऑलमोस्ट समझ लीजिए सबके पास साइकिल है। यहां तक कि एम्स्टर्डम जैसे राजधानी शहर में भी आपको साइकिलें ही साइकिलें दिखाई देंगी, जगह जगह पर आपको साइकिलें खड़ी मिलेंगी, सड़कें साइकिलों से भरी रहती हैं, लड़के पुरुष स्त्री लड़के लड़कियां सभी साइकिल चलाते हैं। मतलब कल्पना करके देखिए कि साइकिल का कितना ज्यादा प्रचलन है और यह सीधे सीधे पर्यावरण से जुड़ा हुआ। आप देख रहे हैं कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने यहां साइकिल के ट्रैक बनाएं और कुछ करें, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने संभव कर दिखाया है और पूरे देश में उनके 32,000 किलोमीटर समझिए कि केवल बाइसिकल के ट्रैक है, बाइसिकल के ट्रैक। ये आपके लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है अपनी बात को बहुत ही प्रोमिनेंटली रखने के लिए। दूसरा यह है फ्रेंड्स कि यह फूलों का बहुत जबरदस्त, कट फ्लावर्स का बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है और यहां जितने भी फूल पैदा होते हैं उसका 50% भाग केवल एक्सपोर्ट के लिए होता है। मतलब इनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो फ्लावर्स है। भारत में भी इसकी बहुत संभावनाएं हैं। तो जब इस तरह के की बात आती है कि आप कृषि उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, जो हमारे कृषक हैं उनकी आय को कैसे बढ़ाएंगे, तो बट नेचुरल है कि आप वहां भी हॉलैंड का यह उदाहरण दे सकते हैं। तो मित्रों ये दो बातें हैं जो हम हॉलैंड से सीख सकते हैं और हमारे अभी प्रधानमंत्री जी वहां गए ही थे और उसमें जो समझौते हुए अखबार में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के समझौते कुछ इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि जल प्रबंधन पर भी एक समझौता हुआ है जिसकी चर्चा मैंने अभी यहां की थी। तो फ्रेंड्स मुख्य विषय जो नीदरलैंड है उससे बस इतना ही। अब मैं अपने आज के डेली ऑडियो लेक्चर के अंतिम चरण पर आता हूं और यह अंतिम चरण है कुछ नौजवान साथियों का स्वागत करने का। तो मित्रों मैं स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सुप्रीम मरकाम बालाघाट मध्य प्रदेश से, कृष्णकांत तिवारी मुंबई से, अंशुल अमरोहा उत्तर प्रदेश से, शैली सक्सेना मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से और रवि प्रकाश पटना बिहार से। तो मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।